अयांश गिलास लेते हुए बोला, आप क्यों लाए राधे? तभी राधे आ गया। जी अयांश बाबा, पानी को बोला था। अयांश आगे बोलता कि संकट जी बोल पड़े, रसोई में था राधे और पानी मैंने दे दिया ना बेटा, पी लो, ये भी तो पानी है। ये सुन अयांश ने पानी पीकर गिलास राधे को थमा दिया। राधे कॉफी, आगे बोलता अयांश ने नो बोल दिया और राधे वापस किचन में चला गया। अयांश संकट जी से, आपको कैसे पता? आरवी ने? संकट जी, नहीं, आरवी ने नहीं बताया, वो मैं कल रात माँ को देखने उठा था, 12 बज रहे थे, नीचे आया तो आरवी को बोलते सुना तो किचन की ओर चल दिया। देखा, आरवी को उसका पति हलवा खिला रहा था, वो भी गाजर का खुद बनाकर। वैसे मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुका वहाँ। अयांश, किचन तक आए तो अंदर भी आ जाते, आपको भी खिला देता। संकट जी हंस दिए, सच में खिलाते क्या? अयांश, आपको क्या लगता है? संकट जी, अयांश मेहरा सिर्फ अपनी बीवी के लिए खाना पका सकता है, सही लगता है, बट मेरी बीवी जो आपकी बेटी है वो तो आपको खिलाई देती। ये तो है, पर आधी रात को मुझे भूख नहीं लगती, वो सिर्फ मेरी बीवी को लगती है। जानता हूँ, वो भी कभी कभार, जब वो भरपेट खाकर नहीं सोती तो उसको आधी रात को भूख लग जाती है। एक बार उठ गई, लगा कि अब कुछ खाना है, चल पड़ती है खाने को, फिर किचन में या तो डिब्बे टटोलती है या फिर फ्रिज में कुछ ढूंढती है, मिला खाया और फिर से बेड पकड़ लेती है, हमेशा से ऐसी ही है। अयांश, बताया मुझे, उसकी इस आदत के चलते आपने तभी किचन के डिब्बों को खाली ना रहने दिया, फ्रिज में कुछ ना मिलता तो डिब्बों में कुछ ना कुछ मिल ही जाता उसे, लाइक कचोरी, ब्रेड जैम, शकरपारे, मीठा नमकीन टाइप चीजें। संकट जी, पसंद जो है उसको ये सब, बचपन से ऐसी है, फ्रूट और कचोरी में कचोरी पहले उठाएगी, चटोरी जो है, हाँ ये सही कहा, चटपटा बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं खुश हूँ आपके हाथ का बना खाना नहीं खाकर भी, एक पिता को भला और क्या चाहिए, उसकी बेटी को उसका बहुत ख्याल रखने वाला जीवन साथी मिला है। ऐसे ही ख्याल रखोगे ना हमेशा मेरी आरवी का? मेरी है अब वो, विश्वास के साथ हमेशा ख्याल रखूंगा। ये सुन शंकर जी ने अयांश को गले से लगा लिया। अयांश भी अपना हाथ मुस्कुराते हुए उनकी पीठ पर रख लेता है। तभी आरवी की आवाज आई, मिस्टर मेहरा। दोनों ने उसकी ओर देखा जो शांति जी के कमरे से आ रही थी। पास आते ही दोनों से बोली, क्या बात है, बड़ा गले मिले जा रहा है, जरा हमें भी तो बताइए, ससुर दामाद किस खुशी में गले मिल रहे हैं? अयांश, तुम्हें बताना जरूरी है। आरवी, देखा चाचू, बस यही बात हमें पसंद नहीं इनकी, खुद कुछ बताते नहीं और खुद को सब जानना होता है, मत बताइए, हमें जानना भी नहीं है। आरवी गर्दन झटक वहां से दिनकर जी के कमरे की ओर चल दी। अयांश आवाज देते, कॉफी पिला दो। आरवी उसकी ओर मुड़ ठेंगा दिखा देती है, नहीं पिलाएंगे। ये देख शंकर जी हंस पड़े और अयांश भी मुस्कुरा दिया। कितना चिढ़ती है शंकर जी, चिढ़ाते हो तो चिढ़ेगी ना। अयांश, अच्छा लगता है बट मना भी लूंगा। तमन्ना है अयांश मेरी, जैसा लड़का मेरी आरवी को मिला है वैसा ही लड़का मेरी मालती को भी मिले। तो ढूंढिए फिर, मैंने आरवी के लिए भी नहीं ढूंढा। तो फिर इंतजार कीजिए, आपकी बड़ी बेटी की जिंदगी में चला आया अयांश मेहरा, तो कोई आपकी छोटी बेटी की भी जिंदगी में चला आएगा जो आपको पसंद भी आएगा। अच्छा, रेडी रहिए, कभी भी वो पल आ सकता है जब आपका दूसरा दामाद भी आपके सामने खड़ा होगा, वो भी आपकी बेटी के साथ। इंतजार भी है और तैयार भी हूँ। और हाँ, वो तुम जैसा हुआ, मेरी बेटी का ख्याल रखने वाला, उसे प्यार करने वाला, उसके नखरे उठाने वाला, तो मैं गंगा नहाऊंगा। स्विमिंग आती है? नहीं आती, डूब जाएंगे। नहीं डूबूंगा मैं, साथ में बाल्टी लेकर जाऊंगा, गंगा के पानी से बाल्टी को भरूंगा और फिर नहाऊंगा, गंगा स्नान भी हो जाएगा और मैं डूबूंगा भी नहीं। शंकर जी जैसे ही ये बोले, अयांश की हंसी छूट गई, वो हंसने लगा, पर जैसे ही पाया शंकर जी उसकी तरफ देख रहे हैं, उसने हंसी रोक ली और नॉर्मल हो गया। शंकर जी उसके कंधे पर हाथ रखते, सही कहती है आरवी, हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो अयांश, ऐसे ही हंसते रहा करो। अयांश कुछ नहीं बोला। तभी शंकर जी का फोन रिंग किया और वो बाहर की ओर चले गए। तभी ऊपर से मालती आ जाती है। हाय जीजू। अयांश उसकी ओर देख, हाय मालती, आप कब आए? अभी। मालती, आरवी दी को पता है आप आ गए हैं? वैसे मेरी दी को मिस किया आज? तुम्हारी दी को तो नहीं किया, बट अपनी बीवी को मिस किया, एंड इम्पॉर्टेंट काम में कभी नहीं भूलता। ओ, वैसे दी है कहाँ? आप घर आ गए और वो आपके आसपास नहीं? अयांश दिनकर जी के रूम की ओर इशारा कर, पास ही जा रहा हूँ। ओके, जाइए जाइए। वैसे वर्तिका भाभी आ गई क्या? मालती ने इधर उधर देखते पूछा। विनत के साथ आ रही है, बोल अयांश दिनकर जी के रूम में चला गया। तभी मालती ने देखा विनत वर्तिका आ रहे होते हैं। मालती दोनों की ओर जाते हुए, हाय वर्तिका भाभी। वर्तिका, हाय मालती। विनत, हमें भी हाय बाय कर दो। हाय बाय मिस्टर विनत। इस बात पर वर्तिका हंस पड़ी। तभी किचन से भागा वहां अभी आ गया और उसने वर्तिका के पास आते ही उसे हक कर लिया। इतना टाइम लगता है क्या ऑफिस से आने में? वर्तिका, अलग होते, घर होकर आए हैं, टाइम तो लगना ही था ना। विनत, दी बताया नहीं था क्या जीजू को? मालती, बताना चाहिए था भाभी, आपके बिना अभी भाई का मन ना लग रहा था, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा, अभी मुंडी हिला देता है और वर्तिका को फिर हक कर लेता है। वर्तिका भी बाहें लपेट लेती है। ये देख मालती विनत मुस्कुरा देते हैं। तभी अभी ने वर्तिका का हाथ पकड़ा। चलो तुम्हें कुछ दिखाना है, खिलाना है। क्या कुछ बनाया है मैंने तुम्हारे लिए? विनित, सिर्फ दी के लिए? अभिनव, मेरे लिए नहीं बनाया। बनाया है, आप भी आ जाइए। मालती, तुम भी आ जाओ। बोल अभी वर्तिका को वहाँ से ले गया। मालती विनित एक दूजे की ओर देखते हैं। तभी विनित का फोन वाइब्रेट हुआ, जो उसके हाथ में ही था। उसने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो उसकी आंखें फैल गईं। मालती उसकी ओर देखते, क्या हुआ, आप ठीक हैं? विनित हल्का सा मुस्कुराया, हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, वो एक अर्जेंट काम आ गया, फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। बोल, विनित भाग कर चला गया। मालती उसको जाते देख, बंदर कभी उछलता रहता है कभी भागता रहता है, कहते मालती भी किचन की ओर चली गई। दिनकर जी बेड पर बैठे थे, उनकी एक साइड आरवी खड़ी थी, दूसरी साइड अयांश। दिनकर जी दोनों की ओर देखते, क्या हुआ? दोनों एक दूजे को देख रहे थे, आरवी अयांश से नजरें हटाकर। कुछ नहीं दादू। दादू, आप मुझे कहानी सुनाने वाले थे ना? हाँ, सुनाने वाला था। सुनाइए फिर, आज हमारे पास बहुत वक्त है, हम कहानियाँ सुनेंगे आपसे। दिनकर जी, अच्छा? हाँ दादू। ये सुन अयांश उसे घूरने लगा। दिनकर जी अयांश की ओर देखते हैं। अयांश, दादू आप आराम नहीं करेंगे? आराम? की आरवी बोल पड़ती है। आराम ही तो कर रहे हैं दादू, आराम करते करते कहानी सुना सकते हैं, है ना दादू? हाँ बेटा। अब अयांश दिनकर जी को घूरता है। ये देखकर दिनकर जी हाथ में पकड़ी बुक आरवी को दे देते हैं। बेटा ये वहाँ रख कर आओ, फिर हम आपको कहानी सुनाएंगे। जी दादू, बोल आरवी बुक लेकर बुक स्लेव की ओर चली गई। उसके जाते ही अयांश दिनकर जी के पास बैठा और धीरे से बोला, इसे आरवी की ओर इशारा कर यहाँ जाने को कहो। दिनकर जी हैरान होते, क्यों कहें? मैं कह रहा हूँ कहानी सुननी है आरवी को, बाद में सुना देना, अभी मन है उसका। मेरा भी मन है मेरी बीवी के साथ रहने का, खबरदार जो अब आपका बाप में हड्डी बने। दिन भर घर पर ही थी, कहानी सुनाने का मन था और इसका सुनने का मन था, तब सुन सुना लेते। अब आप मना करो इसे, वरना मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा आपकी गर्लफ्रेंड को, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, सो अभी मना करो।
दोनों फुसफुसाते बात कर रहे थे कि आरवी आ गई। अयांश दिनकर जी के पास से उठ जाता है। दिनकर जी अयांश की ओर देख रहे थे। आरवी, क्या हुआ दादू? दिनकर जी आरवी से, बेटा थकान सी लग रही है, मन कर रहा है थोड़ी सो जाऊं, आपको बुरा न लगे तो मैं कहानी बाद में सुना दूं आपको। आरवी अयांश की ओर देखती है, जो मुस्कुरा रहा था। आरवी, दादू आपको अचानक सोना याद कैसे आ गया? कहीं इन्होंने, वो आगे भूलती कि ये सुन अयांश बिना किसी हाव भाव के बोल पड़ा, इल्ज़ाम न लगाओ मैंने कुछ नहीं कहा दादू से, सुन लो कहानी सुनाए तो। बोल एक नज़र दिनकर जी को देख अयांश वहां से चला गया। आरवी दिनकर जी की ओर देखती है, जो लेट रहे थे। अंशु ने कुछ नहीं कहा, बेटा अब हम सच में आराम करना चाहते हैं, आज आराम किया ही नहीं, बातों में ही लगे रहे, संकट के साथ अभी के साथ। आरवी कमर से हाथ टिकाते, सब समझ आ रहा है दादू, आपका भी और आपके पोते की होशियारी भी, ठीक है कीजिए आराम। बोल आरवी दिनकर जी को देखते वहां से चल दी। दिनकर जी उसे जाते देख मुस्कुरा दिए। जैसे ही आरवी रूम से बाहर आई तो अयांश ने उसकी कलाई पकड़ उसको अपनी तरफ खींच लिया, जो वहीं बाहर खड़ा था। आरवी उसकी ओर देखते, क्या है? क्रमशः